Iran Radio Podcast.
रूजवेल्ट स्ट्रीट पॉडकास्ट का ये 11वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। चार नवंबर 1979 की सुबह, अभी तक तेहरान क्रांति की आग में तप रहा था। तभी अचानक अमेरिकी दूतावास की ऊंची दीवारें हिल गईं। इमाम खुमैनी के रास्ते पर चलते हुए छात्रों के एक समूह ने एक साहसिक कदम उठाते हुए अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ कब्जा नहीं था बल्कि उन लोगों के दिलों की पुकार थी जिन्होंने दशकों से हस्तक्षेप की मार झेली थी। एक ऐसी पुकार जो जल्द ही पूरी दुनिया में गूंज उठी। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस से लेकर फ्रांस प्रेस और यूनाइटेड प्रेस तक दुनिया की प्रमुख समाचार एजेंसियों ने इस घटना को अपनी सुर्खी बनाया। चिंता और तत्परता के साथ उन्होंने सुर्खी लगाई, ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया है। लेकिन कैमरे ईरानियों के दिलों के जख्मों की गहराई को कैद नहीं कर सके। 19 अगस्त के तख्ता पलट का जख्म, अपदस्त शाह के लिए वाशिंगटन के समर्थन का जख्म और उस पीड़ा का जख्म जिसे कम करने के लिए ईरानी जनक्रांति की योजना बनाई गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के लिए ये घटना बड़ी भयावह थी क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव दहलीज पर थे और इस मौके पर उनके सितारे गर्दिश में पड़ गए। दूतावास पर कब्जा उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर एक बड़ा आघात था। उसी दोपहर कार्डर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार संबंगनियो ब्रेजिस्की ने उन्हें एक जरूरी नोट भेजा। ईरानी छात्रों ने आज सुबह अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया, दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और उनके हाथ बांध दिए। उसके फौरन बाद व्हाइट हाउस में हंगामा बरपा हो गया और संकट कार्य बल का गठन किया गया जिसे अमेरिकियों ने ईरान बंधक संकट का नाम दिया। दूतावास पर कब्जा करने के ठीक एक दिन बाद ईरानी राजधानी में एक राजनीतिक भूचाल आया, लेकिन इस बार सड़क पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय में। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री इंजीनियर मेहदी बाजरगान ने खामोशी से इमाम खुमैनी के सामने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इस पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण हस्तक्षेप, रुकावटें, विरोध और मतभेदों को बताया। इस इस्तीफे के पीछे एक और कहानी छिपी थी, एक ऐसी कहानी जिसका खुलासा इमाम खुमैनी के बेटे सैयद अहमद खुमैनी ने किया। उन्होंने बताया कि उस रात बाजरगान और यदुल्ला साहिबी प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद थे और उन्हें लगा कि इमाम उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। वो इस्तीफा देकर रियायतें हासिल करना चाहते थे, जैसे कि अंतरिम सरकार के बने रहने की पूर्व शर्त के रूप में बंधकों की तत्काल रिहाई। लेकिन इमाम खुमैनी ने पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ न सिर्फ इस्तीफा स्वीकार कर लिया बल्कि तुरंत देश का प्रशासन क्रांतिकारी परिषद को सौंप दिया। एक संक्षिप्त लेकिन चौंकाने वाला संदेश, अंतरिम सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। सैयद अहमद खुमैनी ने रेडियो और टेलीविजन संस्था के प्रमुख से कहा कि इस्तीफा स्वीकार करने की खबर के बाद खुमैनी ए इमाम राष्ट्रीय गीत प्रसारित करें ताकि लोगों को पता चले कि क्रांति से उदारवादी शासन का बड़ा खतरा दूर हो गया है। सैयद अहमद खुमैनी के विचार में अंतरिम सरकार का इस्तीफा अमेरिका के लक्ष्यों के अनुरूप क्रांतिकारियों पर दबाव डालने का एक माध्यम था, लेकिन व्यवहार में इस इस्तीफे ने क्रांति की सत्ता संरचना में उदारवादियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। उसी दिन वाशिंगटन से तेहरान तक पहला सीधा संपर्क स्थापित हुआ। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश विभाग में ईरान डेस्क के प्रमुख हेनरी प्रेश ने आयतुल्ला बहिश्ती की आवाज़ सुनी, एक ऐसे व्यक्ति जो अब क्रांति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे और जिन्हें अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत के लिए वार्ताकार माना जा रहा था। बहिष्ति की प्रतिक्रिया शांत लेकिन दृढ़ थी। ईरानी राष्ट्र न सिर्फ शाह को स्वीकार करने से बल्कि वर्षों के हस्तक्षेप, तख्ता पलट और अपमान से भी आहत है। छात्रों ने बंधकों को सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन आपको इस गुस्से का असली कारण समझना होगा। बहिष्ती ने सुझाव दिया, अगर अमेरिका सचमुच बातचीत करना चाहता है तो उसे ईमानदारी से शुरुआत करनी चाहिए। उसे एक बयान जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने अपदस्थ शाह को क्यों स्वीकार किया। कोई छल नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ सच। दूसरी ओर दूतावास पर कब्जे की लहरें तेहरान तक सीमित नहीं थी। तबरीज, इस्फहान, किरमानशाह ऐसे नाम थे जो 13 आबान के बाद एक बार फिर लोगों की जबान पर थे। तबरीज में पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के सहयोगियों के एक समूह ने, कि जिसे मुस्लिम स्टूडेंट्स कहा जाता था, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया। लेकिन तेहरान के आंदोलन के विपरीत यहाँ सब कुछ पक्षपातपूर्ण ढंग से हो रहा था। इमारत लगभग खाली थी, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी कर्मचारी के, लेकिन मुजाहिदीन ने इसे अपने सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक अड्डे में बदल दिया। इस्फहान में भी यही कहानी दोहराई गई। खाली पड़े वाणिज्य दूतावास पर कब्जा और इस मामले को समाप्त करने के लिए IRGC का हस्तक्षेप। हरान में एक अन्य समूह ने, कि जो ना तो इमाम खुमैनी का अनुसरण करता था और ना ही क्रांतिकारी था, ब्रिटिश दूतावास को जलाने का इरादा किया। लेकिन क्रांतिकारी समिति ने कार्रवाई की। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग क्रांति की लहरों और सत्ता की लहरों पर सवार होना चाहते हैं। MQO द्वारा इस तरह के कब्जे वाली घटनाएं अहंकार विरोधी या साम्राज्यवाद विरोधी प्रकृति की नहीं थीं, बल्कि संगठन के हितों के अनुरूप पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण थीं। अमरीकी वाणिज्य दूतावासों की इमारतों और सुविधाओं को MQO ने अपने कब्जे में ले लिया और संगठन के हितों के अनुरूप उनका उपयोग किया। उन दिनों इमाम खुमैनी के कार्यालय ने एक बयान जारी किया, किसी भी दूतावास, किसी भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। क्रांति का एक स्पष्ट मार्ग है और ऐसी अराजकता सिर्फ साजिश का आधार बनती है। इस गर्मा गर्म माहौल में इमाम खुमैनी की राह पर चलने वाले छात्रों को, जो सोच रहे थे कि उनका अभियान 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, अचानक अपार जन समर्थन मिलने लगा। देश भर से टेलीग्राम और पत्र आने लगे। इससे भी बढ़कर उन्हें इमाम खुमैनी का भरपूर समर्थन हासिल था। दूतावास के लोहे के दरवाजे के पीछे नारों की गूंज थम नहीं रही थी। बुशहर, उर्मिया, सनंदज और गोनाबाद से आने वाले टेलीग्रामों का ढेर लग गया। उत्साह और एक ही संदेश के साथ लिखे गए पत्र, पीछे मुड़कर नहीं देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूतावास के अर्ध अंधेरे कमरों में शुरुआती घंटों में ही वे दराजों को खोलने में कामयाब रहे जिनके बारे में ईरानियों को वर्षों से पता नहीं था। एनक्रिप्टेड फाइलें और कागजात मेजों पर बिखरे हुए थे, ऐसे दस्तावेज जिनसे साबित होता था कि एजेंटों के भेस में राजनयिक साधारण खुफिया जानकारी जुटाने से आगे बढ़कर गुप्त अभियानों का नेतृत्व करने तक की योजनाएं बना रहे थे। जो पहले सिर्फ एक एहसास और एक अनुमान था, अब अमेरिका की आधिकारिक मोहर और हस्ताक्षर के साथ दर्ज हो गया था। उन युवाओं के मन में जो कल रात तक सोच रहे थे कि वो 2-3 दिन से ज्यादा इस इमारत में नहीं रुकेंगे, दूतावास एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया जहां एक के बाद एक गुप्त योजनाओं का खुलासा होने लगा। अगर इमाम खुमैनी के रास्ते पर चलने वाले छात्रों को जन उत्साह ने प्रोत्साहित किया था, तो अब उनकी आंखें गुप्त मोहर लगे दस्तावेजों पर थीं। शुरुआती फैसला कुछ दिनों का विरोध और फिर बंधकों को आज़ाद कर देना अचानक बदल गया। हाई प्रोफाइल घोषणा 12-15 नवंबर को की गई। इमाम खुमैनी के संदेश और हजारों लोकप्रिय टेलीग्रामों का हवाला देते हुए छात्रों ने घोषणा कर दी कि षड्यंत्र और जासूसी केंद्र तब तक कब्जे में रहेगा जब तक मोहम्मद रजा पहलवी को हवाले नहीं किया जाता है। उसी दिन एक और ऐलान किया गया कि हम अपनी स्थिति पर दृढ़ और अटल हैं। प्रारंभिक योजना में कुछ रातों की पहरेदारी और दस्तावेज इकट्ठा करने को पर्याप्त माना गया था। एक व्यापक योजना में बदल गई, एक ऐसी योजना जिसमें बंधकों की सुरक्षा, दस्तावेजों को व्यवस्थित करना और पत्रकारों और पत्रों की बाढ़ का जवाब देना शामिल था। इसलिए एक नया ढांचा तैयार किया गया, जासूसी अड्डे की समन्वय परिषद। उसके बाद शस्त्र परिषद, एक ऐसा समूह जो कार्यकारी मामलों के लिए जिम्मेदार था। संचालन समिति रात्रि गश्त और निरीक्षण जैसे व्यावहारिक कार्यों के साथ साथ प्रशिक्षण शिविरों जैसे संचार, वायरलेस कोड, सैन्य रणनीति और हथियार संचालन की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार थी। बंधक मामलों की समिति राजदूत के निवास और गोदाम के तहखाने में फैले कमरों में ये सुनिश्चित करती थी कि बंधकों को बाहर से कोई नुकसान न पहुंचे और न ही दूतावास के अंदर कोई खतरा पैदा हो। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि बंधक आत्महत्या नहीं करें। दस्तावेज समिति अपना सारा समय दस्तावेजों पर बिताती थी और उसके सदस्य हर शब्द और नाम को ध्यान से समझते थे। सेवा समिति इमाम के मार्ग पर चलने वाले छात्रों की आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार थी। वो रोजाना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के किसी एक रसोई घर से छात्रों के लिए खाना लाते थे और उसे विभिन्न विभागों और इमारतों में बांटते थे। बंधकों के लिए भोजन अलग होता था। दूतावास में पाकिस्तानी रसोईया बंधकों के लिए खाना तैयार करता था। सूचना और प्रचार समिति घरेलू और विदेशी मीडिया से कब्जे और ईरान अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों के बारे में सभी समाचार और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार थी। वो इमाम खुमैनी की राह पर चलने वाले छात्रों की कई घोषणाओं, पोस्टरों और ब्रोशरों को टाइप करने, छापने और प्रकाशित करने और यहाँ तक कि विभिन्न प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार थी। बाद में जासूसी अड्डे से प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के संग्रह की छपाई भी इस विभाग के कर्तव्यों में शामिल कर दी गई। इतने बड़े पैमाने पर काम के अलावा इस विभाग में दूतावास में बोलने, अलग अलग दिनों में दूतावास के गार्ड हाउस की छत पर उपस्थित होने और दूतावास के सामने रैलियों और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के लिए छात्रों को आमंत्रित किया जाता था। इन वक्ताओं में से एक, जिन्हें बाद में MKO समूह ने शहीद कर दिया, मेहंदी रजब बेगी थे। वो मुक्ति आंदोलन के सम्मेलन में इमाम खुमैनी का अनुसरण करने वाले छात्रों के प्रतिनिधि भी थे। पत्रकारों के सवालों के बीच जनसंपर्क समिति के सदस्य मौजूद होते थे ताकि जासूसी अड्डे की खबर दुनिया तक पहुंचाई जा सके। जब इमाम खुमैनी के रास्ते पर चलने वाले छात्र तेहरान में अमेरिकी दूतावास में कागज पर नई योजनाएं बना रहे थे, दुनिया के दूसरी ओर व्हाइट हाउस में माहौल बहुत गंभीर था। 15 नवंबर 1979 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपने प्रशासन के वरिष्ठ सुरक्षा, राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के साथ एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे, जिसका माहौल प्रशासनिक बैठक से ज्यादा एक वॉर रूम जैसा लग रहा था। इस तनाव भरी बैठक में जिमी कार्टर, वॉल्टर मोंडेल, साइरस वेंस, हेरोल्ड ब्राउन, जनरल डेविड जोन्स, हैमिल्टन जॉर्डन, जोडी पॉवेल और गैरी सीख मौजूद थे। और जैसा कि गैरी सीख बाद में बताते हैं, क्रांतिकारी ईरान के प्रति आधिकारिक नीति तैयार करने का ये अमेरिका का पहला गंभीर प्रयास था। मीटिंग के आखिर में कार्टर ने ईरान का सामना करने के लिए दो समानांतर और पूरक रणनीतियों को मंजूरी दी, एक नरम, दूसरी कठोर। नरम रणनीति में कार्टर ने ईरानी क्रांति के नेताओं को बंधकों को रिहा करने के लिए राजी करने के लिए राजनयिक, आर्थिक और मीडिया का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अगर ये दृष्टिकोण विफल रहा तो सैन्य अभियानों की रणनीति का विकल्प रखा गया। इस अभियान में दो योजनाएं शामिल थीं, पहला बंधक बचाओ अभियान, दूसरा बंधकों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई। ये योजनाएं गुप्त, सटीक और न्यूनतम हताहतों वाली होनी थी। यहां तक कि आधिकारिक व्हाइट हाउस बैठकों में भी सैन्य मुद्दों पर सिर्फ मीटिंग के आखिर में और चुनिंदा अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की जाती थी। इन फैसलों के साथ ही अमेरिकी राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति के पहिए तेजी से घूमने लगे। रामसे क्लार्क, एक पूर्व अटॉर्नी जनरल और शाही शासन के आलोचक, और विलियम मिलर, जो उस समय सीनेट की खुफिया समिति के अध्यक्ष थे, उनका लक्ष्य न केवल कार्टर का संदेश पहुंचाना था बल्कि इमाम खुमैनी के साथ सीधी बातचीत का रास्ता भी खोलना था। क्रांतिकारी नेता को जो पत्र उन्हें देना था वो उसी दिन 15 नवंबर को लिखा गया था, जिस पर कार्टर के हस्ताक्षर थे और साइरस वेंस ने उसकी समीक्षा की थी। ये विनम्र, कूटनीतिक और सम्मानजनक प्रतीत होता था। प्रिय आयतुल्ला खुमैनी, क्रांतिकारी परिषद की इच्छा के अनुसार मैंने दो प्रमुख अमेरिकी हस्तियों रामसे क्लार्क और विलियम मिलर से अनुरोध किया है कि वे आप तक ये पत्र पहुंचाएं और आपके या आपके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के साथ तेहरान की स्थिति और दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। मैं आपसे मानवीय आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हिरासत में लिए गए अमेरिकियों को रिहा करने और उन्हें ईरानी धरती से बिना किसी नुकसान के निकलने देने का अनुरोध करता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी लोगों के साथ एक सम्मानजनक, समान और मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। जिमी कार्टर। लेकिन कार्टर के प्रतिनिधियों को लेकर विमान के तुर्की हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले ही एक एनबीसी रिपोर्टर ने खुलासा किया कि वाशिंगटन द्वारा तेहरान से संपर्क करने की कोशिश और इस खबर को प्रकाशित होने से रोकने के अमेरिकी प्रयास असफल रहे। कुछ घंटों बाद इमाम खुमैनी की कड़ी प्रतिक्रिया जारी हुई, एक संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश जिसकी शुरुआत ना तो बिस्मिल्ला से हुई थी और न ही वो किसी लिफाफे में लिपटी हुई थी। ये संदेश, जिसकी तुलना सैयद अहमद खुमैनी ने सूरह अल तौबा से की, पूर्ण अस्वीकृति और अविश्वास का प्रतीक था। ये इमाम का एकमात्र संदेश था जो ईश्वर के नाम से शुरू नहीं हुआ था। संदेश में लिखा था, जाहिर है कार्टर के विशेष प्रतिनिधि ईरान के कुम आने और मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पहला इस्लामी क्रांतिकारी परिषद के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने का अधिकार नहीं है। दूसरा, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को उनसे नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, मुझसे मिलना बिल्कुल असंभव है। अगर अमेरिका ईरानी राष्ट्र के इस नंबर एक दुश्मन अपदस्थ शाह को सौंप दे और हमारे आंदोलन के खिलाफ जासूसी करना बंद कर दे तो राष्ट्र के हित में कुछ संबंधों पर बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। संदेश स्पष्ट था, कार्टर के दूतों को ईरान में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। वाशिंगटन का गुप्त मिशन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया था। तेहरान में अमेरिकी दूतावास में अभी भी इमाम की राह पर चलने वाले छात्र मौजूद थे और व्हाइट हाउस के प्रति ईरान के अविश्वास की ऊंची दीवार हर दिन ऊंची होती जा रही थी। तब से कार्टर और उनकी टीम के सामने न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट था बल्कि समय का खेल भी था, एक ऐसा संकट जो किसी भी क्षण चुनावों और वैश्विक कूटनीति की नियति बदल सकता था।